नमस्कार
जी।
आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी पुस्तक है, जीवन देवता की साधना आराधना।
जी, ये पुस्तक 1988 से 90 के बीच लिखी गई थी। उस खास क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है ये।
हाँ, और जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपना ज्ञान शरीर कहा था, उन्होंने बहुत जोर दिया था कि ये ज्ञान सब तक पहुंचे।
बिल्कुल, उनका आग्रह था कि ये विचार जन जन तक जाने चाहिए।
इसका जो शीर्षक है वही अपने आप में बहुत अनोखा है, जीवन देवता, मतलब जीवन को ही देवता मान लेना।
हाँ,
और फिर उसकी साधना आराधना करना। ये जो हमारी पारंपरिक पूजा पाठ की समझ है उससे काफी अलग लगता है, तो इसका असल मतलब क्या है, इस दृष्टिकोण का सार क्या है?
बिल्कुल सही कहा आपने, यही इसकी सबसे अनूठी, सबसे खास बात है। पूज्य गुरुदेव पारंपरिक पूजा पाठ से आगे बढ़कर बात करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर बाहरी चीजों से, मतलब भेंट पूजा या कर्मकांड से उतना खुश नहीं होता जितना व्यक्ति के अपने जीवन को देखने से होता है।
अच्छा।
हाँ, कि व्यक्ति अपना जीवन कितना श्रेष्ठ, कितना आदर्शवादी, कितना उत्कृष्ट बना रहा है, इससे ईश्वर प्रसन्न होता है।
मतलब ये सिर्फ एक फिलॉसफी या दर्शन नहीं है?
नहीं नहीं ये कोरी फिलॉसफी नहीं है, गुरुदेव कहते हैं ये तो बिल्कुल व्यवहारिक सत्य है। जैसे इस हाथ दे उस हाथ ले वाला मामला।
अच्छा।
हाँ, जब आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को संवारते हैं तो उसका फल तुरंत मिलता है। आत्मसंतोष मिलता है, समाज में सम्मान मिलता है और दैवी कृपा भी। तो जीवन ही वो देवता है जिसकी सही साधना करें तो फल तुरंत सामने आता है।
समझ गया, यानी अध्यात्म कोई अलग चीज नहीं, वो हमारे जीने के तरीके में ही है। अच्छा, तो फिर ये जीवन साधना की कैसे जाए, मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका, कोई स्वरूप बताया है पूज्य गुरुदेव ने?
हाँ हाँ बिल्कुल बताया है उन्होंने, इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया है। तीन हिस्सों में बांटा है इसको।
तीन हिस्से?
हाँ, उपासना, साधना और आराधना, ये तीनों मिलकर ही जीवन की पूरी साधना बनती है।
उपासना, साधना, आराधना, ठीक है।
देखिए, उपासना का सीधा मतलब है पास बैठना, निकट बैठना।
किसके निकट?
ईश्वर के, या फिर उन उच्च आदर्शों के जिन्हें हम मानते हैं, उनके गुणों के बारे में गहराई से सोचना, चिंतन करना और कोशिश करना कि वो गुण हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में उतरें। ये हुआ उपासना, मतलब मानसिक स्तर पर ईश्वर या आदर्शों के करीब जाना।
ठीक है, विचारों में आदर्शों को लाना, ये हुई उपासना। फिर दूसरा?
दूसरा है साधना, इसी को जीवन साधना भी कहा है। ये है अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया, आत्मसुधार।
आत्मसुधार कैसे?
इसमें सिर्फ बाहर का अनुशासन नहीं है, इसमें आता है संयम, इंद्रियों का संयम, समय का संयम, पैसे का यानी अर्थ का संयम और सबसे जरूरी विचारों का संयम।
अच्छा।
हाँ, मतलब अपने व्यक्तित्व को तराशना, जैसे मूर्तिकार पत्थर तराशता है, अपनी कमियों को हटाना, अच्छे गुणों को, सद्गुणों को बढ़ाना, ये सब साधना है।
ये तो काफी गहन प्रक्रिया लगती है। और तीसरा क्या था? आराधना?
हाँ, आराधना। आराधना यानी सेवा, लोकमंगल के काम, दूसरों की भलाई।
सेवा?
जी, पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये जो पूरी दुनिया है, ये सृष्टि, ये परमात्मा का ही रूप है, तो इसकी सेवा करना मतलब परमात्मा की ही सेवा करना है। अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे वो समय हो या ज्ञान या मेहनत या फिर पैसे का कुछ अंश, दूसरों की भलाई में लगाना, यही सच्ची आराधना है।
अच्छा, तो उपासना यानी आदर्शों से जुड़ना, साधना यानी खुद को बेहतर बनाना, और आराधना यानी फिर उस बेहतर बने हुए रूप से संसार की सेवा करना। ये तीनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं।
बिल्कुल, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं।
क्या पूज्य गुरुदेव ने इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का कोई तरीका भी बताया है, कोई विधि?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्रज्ञा योग साधना बताई है, वो इसी का एक व्यवहारिक रूप है।
प्रज्ञा योग?
हाँ, इसमें चार चीजें हैं। रोज सुबह उठकर आत्मबोध करना, मतलब ये सोचना कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। रात को सोने से पहले तत्वबोध, यानी आज का दिन एक मृत्यु की तरह है, और पूरे दिन का सिंहावलोकन करना, क्या सही किया, क्या गलत,
रोज का हिसाब किताब।
हाँ बिल्कुल, और इसके साथ नियमित जप, ध्यान, और चौथा मनन। आत्मविश्लेषण के चार सूत्र वही संयम वाले, इंद्रिय, समय, अर्थ और विचार। संयम पर रोज विचार करना कि कहाँ कमी रही।
ये तो पूरे जीवन शैली को बदलने वाली बात है
जी। ये पूरी साधना पद्धति का प्रैक्टिकल निचोड़ है।
ये रास्ता सुनने में तो बहुत सीधा और शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन आत्म सुधार और सेवा के रास्ते पर मुश्किलें तो आती ही होंगी, बाधाएं। इस बारे में कुछ कहा है पूज्य गुरुदेव ने?
हाँ बिल्कुल, मुश्किलें तो आती हैं। उन्होंने तीन मुख्य बाधाओं का जिक्र किया है, इन्हें भव बंधन भी कहा है। ये है लोभ, मोह और अहंकार।
लोभ, मोह, अहंकार, हाँ ये तो सुने हुए नाम है।
हाँ, पर गुरुदेव इनके बहुत गहरे अर्थ बताते हैं। यही वो वृत्तियां हैं, आदतें हैं, जो इंसान को नीचे गिराती हैं, पतन की ओर ले जाती है।
अच्छा,
तो इनसे कैसे निपटा जाए? जैसे लोभ है।
हाँ, लोभ
यानी धन दौलत और चीजों का बहुत ज्यादा लालच, जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा। इस पर जीत पाने का तरीका है सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना और संतोष।
संतोष,
हाँ संतोष, अपनी जरूरतें सीमित रखना और जो मिले उसमें संतुष्ट रहना, और हाँ ईमानदारी से कमाना।
ठीक है, और दूसरा था मोह।
मोह यानी किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत ज्यादा अनुचित लगाव, चिपकाव, मेरा तेरा का संकीर्ण भाव।
ये तो बहुत होता है।
हाँ, इसका समाधान है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, यानी पूरी दुनिया को अपना परिवार समझना, सिर्फ अपने छोटे से दायरे में न बंधे रहना और अनासक्ति का अभ्यास करना। लगाव रखो पर ऐसे कि वो बंधन न बने।
ये मुश्किल लगता है थोड़ा।
और तीसरा अहंकार। अहंकार ये सिर्फ घमन नहीं है, इसके बहुत सूक्ष्म रूप होते हैं, जैसे दिखावा करना, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, अपनी ही बात को सही मानना।
हाँ ये भी बहुत आम है।
इसे जीतने का तरीका है विनम्रता, दूसरों का सम्मान करना और सबसे जरूरी आत्मनिरीक्षण, लगातार देखते रहना कि कहीं अहंकार सिर तो नहीं उठा रहा।
तो ये तीन लोभ, मोह, अहंकार, ये साधना की राह में मुख्य रुकावटें हैं। इनको पहचानना और हटाना ये साधना का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ।
बिल्कुल सही, निरंतर प्रयास करना पड़ता है इनसे पार पाने के लिए, ये साधना का अनिवार्य अंग है।
और जब व्यक्ति इन बाधाओं को पार कर लेता है फिर वो आराधना या सेवा के स्तर पर पहुंचता है।
हाँ, और तब पूज्य गुरुदेव सेवा का सबसे ऊंचा रूप बताते हैं, वो है ज्ञान यज्ञ।
ज्ञान यज्ञ,
हाँ यानी सद्ज्ञान का, अच्छी सोच का, अच्छी प्रवृत्तियों का विस्तार करना, फैलाना।
अच्छा,
उनका मानना था कि किसी को सिर्फ रोटी कपड़ा दे देना वो पूरी मदद नहीं है, सबसे बड़ी सेवा है लोगों में सही सोच जगाना, विवेक जगाना, ताकि वो अपनी समस्याएं खुद हल करने लायक बन सकें।
ये बात तो सीधे सीधे पूज्य गुरुदेव के उस आग्रह से जुड़ती है कि उनके ज्ञान शरीर को फैलाया जाए, मतलब उनके साहित्य को, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाए।
बिल्कुल, विचारों का प्रसार करना, सत्संग करना, छोटी छोटी गोष्ठियां करना और सबसे बढ़कर खुद एक अच्छा उदाहरण बनकर जीना, ये सब ज्ञानज्ञ की ही अलग अलग तरीके हैं।
शायद इसीलिए ज्ञान दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है।
निश्चय ही।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जीवन देवता की साधना आराधना का मुख्य संदेश यही हुआ कि सच्चा अध्यात्म कहीं बाहर मंदिरों या तीर्थों में नहीं है,
नहीं,
बल्कि अपने ही जीवन को संवारने में है, उसे उत्कृष्ट बनाने में, अपने चरित्र को निखारने में और फिर उसे समाज की भलाई में लगाने में है।
खुद को बेहतर बनाना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है।
बिल्कुल यही सार है, आत्म परिष्कार ही सच्ची ईश्वर उपासना है। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है।
पूछिए।
आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, इतनी व्यस्त, इसमें हम अपने अंदर छिपे हुए ये जो लोभ, मोह, अहंकार हैं, इनके बड़े सूक्ष्म रूप भी तो होते होंगे जो हमें पता भी नहीं चलते।
हाँ बिल्कुल होते हैं।
तो उन्हें कैसे पहचाना जाए और पहचानने के बाद उनसे मुक्त होने की तरफ पहला कदम, छोटा सा ही सही, वो क्या हो सकता है?
ये बहुत ही अहम सवाल है, सोचने वाला प्रश्न है। शायद इस पे चिंतन करना ही पहला कदम हो सकता है। अपने अंदर झांकना, अपने मोटिवेशंस को देखना, ये अपने आप में एक शुरुआत हो सकती है।
हाँ, शायद इस पर सोचना ही अपने आप में एक साधना है।
बिल्कुल।